2/6/1966 चौथे पेज के मध्य में वाणी चल रही थी। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय स्थापन करते हैं। और आसुरी को रिजुविनेट करते हैं। कौन सा ब्रह्मा? दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं, उसकी पूजा नहीं होती है। वही ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, माता में प्रवेश करता है, तो जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। उसी जगदम्बा की बात है कि दैवी संप्रदाय स्थापन करती है और आसुरी को रिजुविनेट करती है। हम जो पतित हैं, ब्रह्मा द्वारा हमको पावन बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुतों को ये निमंत्रण देते रहो। वो है ना बरोबर कि सबको निमंत्रण देना, एक भी न रहे। एक तो तुम जाकर के निमंत्रण दो, दूसरे फिर अखबारें भी निमंत्रण देंगी। वो अखबारें भी कुछ कम काम नहीं करती है, उसमें भी चित्र पड़ेंगे। धीरे धीरे सब जगह में जाएंगे। टाइम लग जाएगा और टाइम भी बहुत जास्ती नहीं समझना, क्योंकि जब हंगामा होता है तब सब हाय हाय करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात, ये ज्ञान ठहरता नहीं है। बोले याद करो तो उनका ये मरा, ये मरा। उस तरफ में वो दुखी होते रहेंगे। अभी समय है बच्चों को, जितना जल्दी हो सके इतना बच्चों को ख्याल आना चाहिए। हम जल्दी जल्दी याद करें तो ये खाद जल्दी जल्दी विकारों की निकल जाए। ऐसा न हो कि खाद निकालने के पहले हमारा शरीर कहीं छूट जाए। पीछे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसी जन्म में पुरुषार्थ करके जितना हो सके याद करते रहो। शरीर के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसी जन्म में हमको बाबा को याद करना है। उसका नतीजा क्या होगा? योग में रहेंगे तो तुम बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। फायदा भी होता जाएगा। इसलिए अपनी याद के लिए अपने से बात करते रहो। अपन को समझते रहो हम कहाँ तक अपने प्रति प्रिय बाबा से जिससे हम अभी सदा सुख का वर्षा लेते हैं, कितना याद करते हैं और कितना प्रेम से याद करते हैं। प्रेम से कोई याद करते हैं तो प्यार के आंसू भी याद जाते हैं। कई कई सुबह को बैठ करके देखो तो प्रेम से बैठ कर उन्हें याद करो। बाबा हम कितना बड़ा खुश नसीब हूँ जो हम आकर के आपके बच्चे बने और आपसे अभी हमको सदा सुख का वर्षा मिलता है। दुनिया तो अभी भी भटक रही है, भक्ति मार्ग में हम इतना पुकार करती थी, अब हमारी भक्ति पूरी हुई। बाप आया हुआ है और दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि कोई भक्ति पूरी होती है। तुम बच्चों को मालूम है कि भक्ति मार्ग अभी मुर्दाबाद होने वाला है। अंग्रेजी में भक्ति कल्ट भी कहते हैं। हिंदी में इसको भक्ति मार्ग कहते हैं। अभी भक्ति मार्ग खत्म होने का है क्योंकि ज्ञान सागर आ गया। तो अभी समझा ना, भक्ति माना भक्ति वेद ग्रंथ शास्त्र पढ़ना ये सब करना भक्ति है। अब भक्ति से पढ़ने से तो ऐसे तो नहीं होगा, भक्ति माना ही दुर्गति। फिर ज्ञान चाहिए बाप का और कथित पावन को जरूर आना पड़े। पुकारते भी हैं पतित पावन बाप को और तो कोई चीज को नहीं पुकारते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, आ करके हमको सदगति दो। तो बाप आकर के समझाते हैं ना बच्चों को कि तुम्हारी दुर्गति देखो कैसे हुई है। 2666 की वाणी का 5वां पेज, कि तुम थोड़े ही समझ सकते थे कि दुर्गति कैसे हुई। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं समझते हैं, कोई भक्ति से दुर्गति होती है ऐसे कोई नहीं समझते। भले जितनी भक्ति करेंगे जितनी करेंगे इतना भगवान हमको जल्द मिलेगा, कोई न कोई रूप में मिलेगा। अभी कोई न कोई रूप में कोई आवे, कोई ऐसे थोड़े ही मिलते हैं, नहीं बाप आते ही हैं और कोई न कोई रूप नहीं धारण करते हैं, एक ही रूप धारण करते हैं। अनेक रूप धारण नहीं करते, सो भी उस रूप को बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाबा हमको इस ब्रह्म के कंसेदे को कितना पकाते, कितना ये याद कैसे सिखलाते हैं कि मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होगा। तुमको ऐसे तो नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा को याद करो। तुमको कहते हैं माँ मेरे कम याद करो। तो इस योग से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो योग ऊंचे के ऊंचे से चाहिए ना, ब्रह्मा कोई ऊंचे से ऊंचे नहीं है ना। सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा को ऊंचे से ऊंचे दिखाती है क्या? किसको ऊंचे दिखाते हैं? हैं? कहते हैं ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः। फिर कहते हैं शंकर देवाय नमः। यह शिव परमात्मा ही नमः कहना चाहिए, शिव परमात्मा ही नमः। परंतु उन्होंने शिव शंकर को मिला ही दिया है। ये नहीं समझते हैं कि शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग, तो मिलाए क्यों दिया है? क्योंकि एक ही शरीर में दोनों आत्माएं काम करती हैं। तो सूक्ष्म बतन में दिखाया है कि ऊंचते ऊंच कौन है। देखो तुम्हारा योग ऊंचे से ऊंचा बाप के साथ, तो उनसे क्या होगा? हम पावन बन जाएंगे। फिर वहाँ मूल वतन में जाकर बाप के गले का हार बनेंगे, है? मूल वतन में बाप का गला होगा? होगा? फिर कैसे कह दिया? है साकार में, साकार सृष्टि पर तुम मूल वतन को उतार लेंगे। इस साकार सृष्टि पर ही कोई स्थान होगा जहाँ तुम सब बच्चे आत्म की स्थिति में स्थित होंगे। देवान हो जाएगा, वहाँ आत्मा ही आत्मा होती है, योग का प्रकाश होता है। तो बताया कि मूल वतन में जाकर बाप के गले का हार बनेंगे। बाप के गले का हार कितने बनते हैं? 108। तो नंबर बार बनेंगे ना, जैसे गले का हार बनेंगे है तो सारी दुनिया की जीवात्मा, जीव की आत्मा है, ऐसे नंबर बार फिर से आएंगे पाठ बजाने। यहाँ मौज में रह पड़े हो, जाते हैं पहाड़ पर घूमने के लिए, विश्राम पाने के लिए, वो कोई धंधे धोरी थोड़ा ही होता है। धंधे धोरी तो छोड़ करके आए, ये पहाड़ पर जाते हैं शांत और विश्राम पाने के लिए। उनको कोई ज्ञान व राजयोग, जो पहाड़ों पर घूमने जाते हैं भक्ति मार्ग में, उनकी कोई कमाई थोड़ी होती है, सिर्फ रेस्ट लेने के लिए जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। और यहाँ तो तुमको कोई थकान की बात ही नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ता है कि हम आधा कल्प के थके हुए हैं, कि भक्ति मार्ग में बाबा को ढूंढने में थक गए। ढूंढते रहे परंतु कहीं भी ढूंढते ढूंढते बाबा का पता नहीं लगा। बाप आए तब अपना पता भी। देखो है तो वो ही मन मना भव, परंतु नाम दे दिया है कृष्ण का। अभी कृष्ण को कभी कोई भगवान नहीं मानेगा, क्यों है? कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आती है, और कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा तो जरूर बाप से पैदा होता है। वो राजयुग की बातें क्या जाने, तो कृष्ण को कभी कोई भगवान नहीं मानेगा। भगवान तो आकर के राजयोग से विश्व की भाषा ही देते। अच्छा तुम योग में रह करके भोजन पा सकते हो, पीछे जितनी परहेज कर सको, भक्ति मार्ग में परहेज तो कोई सिखलाते नहीं है कभी भी, क्योंकि बहुत परहेज वहां से लानी पड़ती है। सन्यासी कभी कोई को कह नहीं सकेंगे तुम कमल फूल के समान रहो, घर गृहस्थ व्यवहार में रहकर बाप को याद करो। क्यों नहीं कह सकेंगे? हाँ, अगर सब घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दें, सन्यासियों की तरह, तो सन्यासियों का पेट कैसे भरेगा? वो इन बातों को जानते ही नहीं है, वो कभी कह न सके, क्योंकि खुद थोड़े ही रहे हैं, खुद भागे हैं, तो दूसरे को ये मालूम थोड़े ही हो देंगे कि हम कैसे भागे। वो जानते ही नहीं है इस राय देने को। ये राय तो बाप देते हैं कि घर व्यस्त व्यवहार में रह करके कमल फूल समान बनो, उपराम बनो, घर व्यस्त की तरह बुद्धि में आनी नहीं चाहिए, बुद्धि से उपराम। वो ही जानते हैं कि बच्चे अपने घर बाहर में बच्चों से बैठ करके एक सिर्फ ये करो, एक तो पवित्र हो और मुझे याद करो, नहीं तो याद के लिए देखो कितने चित्र हैं, अनेक चित्र हैं, अति चार चित्र हैं। कहाँ भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग। तो बाप बोलते हैं नहीं, याद करने के लिए अनेक चित्रों की बात नहीं है, कितने की बात है, हैं? एक मुकर रथ में आता हूँ तो एक ही चित्र की बात हुई ना, अपने बाप को याद करो। वर्षा तो उनसे ही मिलेगा, इनसे थोड़ा ही मिलेगा, किनसे? ब्रह्मा से। वो चित्तों से थोड़े ही वर्षा मिलता है, वो भक्ति मार्ग में तो क्या करते हैं, गुरु का चित्र गले में लटकाई देते हैं, तो चित्र से वर्षा मिलेगा क्या? नहीं। जो भी तुम देखते हो वो सब ये रचना है, और मैं हूँ रचयिता सबका। क्या बात, तुम इन आँखों से जो भी सब देखते हो वो सब क्या है? रचना है। ब्रह्मा भी क्या है और शंकर भी क्या है? हैं? वो भी तो रचना है, लेकिन जो इन आँखों से नहीं देखा जाता, देखा जाता है उसको तुम याद करते हो। मैं हूँ रचयिता सबका, रचयिता से ही वर्षा मिलेगा और कोई से वर्षा ले नहीं सकते है। वर्षा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। पांच सौ करोड़ की मुक्ति होनी है या थोड़ों की होनी है? 500 करोड़ की मुक्ति होनी है। देखो, समझ तो सकते हो, साधु संत महात्मा ये भी जन्म जन्मांतर हैं, इनका रास्ता तो समझ सकते हो ना। ये संन्यास धर्म शुरू हुआ उसको भी 1500 वर्ष हो गया। शंकराचार्य का ये संन्यास मठ है। अच्छा, उनका भी संग करते आए। देखो, सीढ़ी उतरते आए, नीचे ही गिरते आए। सीढ़ी ऊपर तो कोई चढ़ न सकेंगे, सीढ़ी ऊपर में कोई चढ़ ही नहीं सकते, सबको उतरना जरूर है, तमोप्रधान जरूर बनना है। जो बाप आकर के फिर सबको सतोप्रधान बना दे, तो कौन से बाप की बात है? लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलते रहे, नीचे गिरते आए। दूसरा है बेहद का बाप, मनुष्य सृष्टि में बेहद का बाप कौन है? है एडम, आदम, जिसे आदिदेव कहते हैं, प्रजा पिता कहो, सारी प्रजा का पिता, उससे भी हृदय का वर्षा मिलता है? मिलता है, उससे भी नहीं मिलता। तो देखो, सब क्या बनाते हैं? तमोप्रधान या सतोप्रधान है? सब तमोप्रधान बनाते हैं। जो बाप आकर के सबको सतोप्रधान बनाए, अच्छा बच्ची बाजा बजाओ, बाबा को बात समझ में नहीं आती है तो बाजा याद आ जाता है या तो डोली याद आ जाती है। तो वास्तव में बाप तब आता है जो आकर के सबको सतोप्रधान बनाई देता बनाता है। कब आता है? है? अरे 36 में आता है। अरे चुप, कब आता है? है 36 में आता है, आता है, है? हाँ, दुनिया में भी बाप जब बीज डालता है तो कोई देखता नहीं, कोई को पता चलता है। तो संत 36 में ज्ञान का बीज डाला, पता तो किसी को नहीं चला कि बाबा आया आया नहीं आया। अच्छा, जिसके द्वारा बीज डाला वो तो चला गया। कब चला गया? 42 में गया। उसकी लाश ही गुम कर दी लोगों ने। फिर आया कब? 47 में। लेकिन किस रूप में आया? माँ के रूप, धन माँ के रूप में आया। बाप तो नहीं आया। ब्रह्मा क्या करेगा? माँ क्या करती है? हैं? बच्चों का पोषण करती है, दूध पिलाती है। तो ज्ञान का दूध पिलाए। दूध ही पिलाया या मक्खन पिलाया? दूध पिलाया। मक्खन कहे, अमृत कहे, वो तो नहीं बताया। मुरली में भी बोला है, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो दूध को मंथन किया जाता है तो उसका सार निकलता है, अमृत निकलता है। तो जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे मंथन तो हुआ नहीं, दूध का दूध ही रहा। इसलिए उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो वेदों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन जो ज्ञान है वो किसी को समझ में नहीं आया। सब बातों का समाधान तो मिलता नहीं। तो बाप आकर के फिर सबको सतोपधान बनाते हैं, हैं? किस रूप में आए? बाप के रूप में कब आए? क्षेत्र में आए। अच्छा, मुरली में तो बोला है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो संक्षेत्र आता है, तो संक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण की आत्मा प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्ष का रूपी जन्म लिया या शिव ने लिया बाप के रूप में? तो नारायण वाली आत्मा तो राम हुई। मुकरर रथ है, कौन सा हुआ? राम वाली आत्मा का यज्ञ के आज में भी राम, मध्य में भी राम। वो आत्माओं का बाप तो है, आत्माओं का बाप है नहीं, मनुष्यों का ही तो बाप है। तो वो सत्व प्रधान बनाता है, वो भी सत्व प्रधान नहीं बनाता। न सबको सत्व प्रधान बनाता है 500 करोड़ को। तो बाप आकर के, कौन सा बाप? आत्माओं का बाप। वो कब आता है? अभी आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, फिर कहते हैं सबको सत्व प्रधान बनाते हैं। बाप आते हैं और फट से राजधानी स्थापन कर लेते हैं। और धर्म पिताएं आते हैं तो राजधानी थोड़े ही स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। ब्रह्मा भी आया तो ब्राह्मण धर्म स्थापन किया।
है ना। सनत कुमार आता है तो सनातन धर्म स्थापन करता है कि राजधानी स्थापन करता है, है? राजधानी जी स्थापन नहीं करता। वो बात कौन है जो आने के साथ ही साथ राजधानी भी स्थापन करता है, है? शिव बाप, वो आत्मा अलग है। और राम वाली आत्मा या शंकर वाली आत्मा अलग। हाँ ये जरूर का है कि तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या जितने और उतने का सवाल है, तू तो है, तू जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है तो जरूर ज्यादा पावरफुल होगा बुद्धि से, तो याद भी जाति करता होगा, तो जितना याद करता है उतना उसके साथ है, साथ है तो सच्ची बात बोलेगा या झूठी बात बोलेगा? अगर साथ है तो सच्ची बात बोलेगा। बाकी सबको सतोपदान नहीं मनाते हैं, कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, अच्छा बच्ची बाजा बजाओ फिर आगे बोले तुलसीदास ये मंत्र जपे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तो क्या चंदन घिसे? दूध को मंथन करो या दूध को घिसो? तो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, रघुवीर माने भगवान। भगवान ने विश्व की बादशाही का तिलक लगाई दिया, किसको? क्यों उसी को क्यों लगाई दिया? है राजाई का तिलक औरों को नहीं लगाते क्या? अरे 108 राजाएं होंगे या नहीं होंगे तो उनको तिलक नहीं लगाएंगे? हाँ गायन है एक का, अब्दुल नंबर का गायन होता है, बाकी सबका बात तो सबकी नंबर बार होती है। तो कहते हैं ना बस तुम याद करती हो कौन तुमको राजाई का तिलक मिल जाएगा। मनुष्यों ने तो ये सभी टोटका बनाए हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, कोई चंदन घिसने से तिलक मिल जाएगा विश्व की बात आएगा? ऐसे हो सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मनुष्यों ने टोटके बनाए हैं। तुलसीदास भी कौन था? मनुष्य था, देवता था या भगवान था? है मनुष्य तो था, उनको बुद्धि भी था, वो किसी को ये बात समझा सकते थे, है कि तुलसीदास चंदन के तहत तिलक देते रघुवीर, इसका क्या अर्थ हुआ? किस बात का तिलक देते? तिलक क्या चीज है वो तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं तुम अपने ऊपर आप ही राज्य का याद से राज्य का तिलक ले लो, ले सकते हो। अति लाडले और अति शिथिल दे रूवानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का, क्योंकि अभी रूहानी बाप भी हुआ तो दादा भी रूहानी हुआ ना, क्योंकि आत्मा अभिमानी सब बने हैं ना, तो रूहानी बाप रूहानी दादा बच्चे जानते हैं कि बरोबर दादा द्वारा रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। तो बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 3/6/1966। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कौन सा दर्पण है? ज्ञान का दर्पण है। जिस ज्ञान के दर्पण में आत्मा को अपने जन्म जन्मांतर के मुखड़े देखने में आ सकते हैं, ये मनुष्य सृष्टि है। और अभी इस समय में तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य हो, तुम हो, ऐसे क्यों कहा है? दुनिया में और माँ ब्राह्मण नहीं है क्या है? तुम ही ब्राह्मण क्यों हो दुनिया में? और ब्राह्मण नहीं है, है? वो तो कहते हैं हम 8 कुलियों के अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण नहीं है ते? तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य हो, इसलिए हो कि तुम ब्राह्मणों ने साक्षात डायरेक्ट ब्रह्मा से मुख से ज्ञान लिया। उन ब्राह्मणों ने कोई ब्रह्मा के मुख से ज्ञान नहीं लिया। और बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को, आत्मा को अपने धर्म का भी पता है कि हम आत्माएं शरीर को भी चलाने वाली हैं। ये गाड़ी है, रथ है, पहले नहीं पता था कि हम ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। इसको रथ भी कहा जाएगा ना, है? रथ क्यों कहा जाएगा है? रथ में घोड़े लगाए जाते हैं, तो ये इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, शरीर रूपी रथ है, और बुद्धि की लगाम है, तो रथ भी कहा जाएगा। जैसे बाप आकर के इस रथ पर सवार हुए हैं, है तो वास्तव में शांत स्वरूप आत्मा, तो तुम्हारी आत्माएं भी इस रथ पर सवार हैं। वास्तव में ये आत्माओं को ये ज्ञान भूल गया है कि हम स्वतः आत्मा शांत का स्वरूप है। हमारा रहने का स्थान शांति धाम है, मूल वतन। ये जो स्थूल शरीर हमको मिलता है, शांति धाम में नहीं होता, कहाँ मिलता है? इस लोक में मिलता है, जिसे मनुष्य लोक कहा जाता है। यहाँ मिलता है तुम्हें ये शरीर,
अभी आत्मा अपने से बात करती रहती है। बाप ने सिखलाया है बच्चों को यानी आत्माओं को कि अभी तुम आत्मा है, तुम्हारा स्वधर्म आत्मा है। ये नहीं कि हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, नहीं। अभी बाप ने हमको सिखाया है तुम्हारा स्वधर्म स्व माने आत्मा, तो आत्मा का धर्म शांत स्वरूप है। अगर तुम चाहो कि हम शांत में बैठे तो तुमको क्या करना होता है? है अपन को आत्मा समझना है ज्योति बिंदु, और अपने को शांति धाम का निवासी समझ। थोड़ा टाइम के लिए चाहो तो शांत में बैठ सकते हो। मनुष्य तो शांति मांगते रहते हैं, शांति दो ऐसे कहते हैं ना, मन को शांति मिले। अभी ये कौन कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए? ये मन किसका है? मन चित्त बुद्धि ये किसकी है? ये आत्मा बात करती है ना कि मुझे शांति चाहिए। वह तो कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए, वह कहते हैं मुझे शांति चाहिए, कि मुझे किसने कहा? आत्मा ने कहा ना, वो बात भूल गए। इसलिए आके भी देते हैं। एक रानी का हार गुम हो गया था, पड़ा था गले में, परंतु समझती थी कि गुम हो गया है। सो बाहर ढूंढती थी, तो देखो ये पहेली बनाई है इस बात के ऊपर। तो इस बात के ऊपर ही बात समझाते हैं कि बच्चे शांति चाहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माएं हैं इंसान, क्योंकि देह अभिमान हो करके फिर उसको कहा जाता है शांति चाहिए। है अशांति का ही आती है, देह बन से अशांति आती है, आत्मा भी बनी रहे तो शांति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं और बच्चों ने समझा है कि हम आत्मा है तो शांत स्वरूप है। आए हैं शांति धाम से यहाँ पार्ट बजाने के लिए। है यहाँ किस लिए आए? शांत रहने के लिए आए, पार्ट बजाने के लिए आए। पहले पहले आते हैं, सतो प्रधान आत्मा होती है, सतो सामान्य होती है, तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देवात्मा का पार्ट बजाते हैं। फिर बाद में आत्मा तमो प्रधान बनती है, रजो प्रधान बनती है, तो देवान आ जाता है, तो रजो प्रधान बनती है। तो अगर हम चाहें कि स्वधर्म में टिके तो हम इस शरीर के आर्गन से डिटैच हो कुछ भी बात नहीं करते, पर ये शरीर तो है ना, इसको ही कहा जाता है आत्मा अपने स्वधर्म में, शांत धर्म में, जितना चाहे इतना बैठ सकती है। तुम अगर चाहो तो हम बहुत समय बैठ जाएं, वो भी शरीर से कर्म न करे, तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हम आत्मा है ना, हम इस शरीर से इस आर्गन से कोई भी काम नहीं लेते हैं, यानी कर्म का नहीं करना चाहते। बस ये समझ करके इसको फिर कहा जाता है सच्ची स्वधर्म की शांति। वो हठयोग करके शांत चाहते हैं,
परंतु नहीं, शांति जो तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए तुम शांति की कभी ढूंढ नहीं सकते, शांति को कभी ढूंढ नहीं सकते। अभी जबकि तुमको पाप से ज्ञान मिला है तो ये शांति कहाँ से आई? शांति तो हमारा स्वधर्म है, हम अज्ञान में थे, शांति कहाँ से आई? है ज्ञान मिला तो हमको शांति आई। अभी तुमको बाप से ज्ञान मिला है तो ज्ञान से शांति आई, और हम रहने वाले भी वहां के ही हैं। अच्छा, अभी ये कर्म क्षेत्र है तो जरूर कुछ करना पड़े। बैठे रहेंगे कितना देर ही बैठे रहेंगे? अगर हम बैठ जाते हैं डिटैच होकर के तो कितना बैठेंगे? अच्छा, आधा घंटा बैठ सकते हैं, घंटे भर भी बैठ सकते हैं, ऐसे तो नहीं है कि नहीं बैठ सकते हैं। सन्यासी अभ्यासी होते हैं, अभ्यासी बैठ सकते हैं, फिर भी शरीर जो है इससे कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर निर्वाह भी तो करना है जरूर। शरीर निर्वाह नहीं करेंगे तो चलेगा? मान लो शरीर का अंग नाक है, इसे श्वास लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। तो शरीर निर्वाह तो करना ही जरूर है, तो कर्म करना पड़ेगा। परंतु इस समय में तुम बच्चों को ये मालूम है कि हम आत्माएं अपने शांति धाम की रहने वाली है, और यहाँ हम अभी 8 बजा रही। अभी हमको मालूम पड़ा बाप से कि हमने यहाँ आकर के 84 जन्म का पाठ बजाया। नहीं तो हम शांति धाम के रहने वाले, परंतु खेल करना होता है तो जैसे कोई ऑर्डिनरी जाते हैं खेल करने के लिए, वो कपड़ा बदल करके आते हैं ना ड्रामा में, तो ये भी बराबर खेल करने के लिए, क्योंकि अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला हुआ है 84 के चक्कर का। कोई भी मनुष्य को मालूम नहीं रहता है कि 84 का चक्कर, देखो इस चक्कर का सिर्फ तुम बच्चों को मालूम रहता है। इस चक्कर का मालूम रहने से कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया है, तो उस हिसाब से हम पहले पहले तो सूर्यवंशी राजा थे, अथवा रानी थे या प्रजा थे। अच्छा, 84 का चक्कर फिरा है, अभी हमारा ये चक्कर पूरा हुआ है, हमको फिर से वो सूर्यवंशी राजा रानी बनना है। 366 की वाणी का दूसरा पेज। तो अभी तुम बच्चों को 84 का चक्कर का ज्ञान हुआ ना, इससे सिद्ध हुआ कि तुम षष्ठी चक्र के आज मध्यंत को जान गए, अर्थात ये जो ड्रामा का बड़ा चक्कर है, सच्ची का चक्कर जिसको रचना कहा जाता है, उस रचना को भी जान गए हो। ये किसके द्वारा जान चुके? अरचयता द्वारा जान। तो अभी तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो,
कोई भी विद्वान आचार्य पंडित शंकराचार्य फलाना फलाना यहाँ इतने बड़े बड़े मनुष्य हैं, अरे एक को भी शशि चक्र का कोई भी पता नहीं। और ये तो सहज है ना बच्चों को समझना, इसमें तकलीफ तो है ही नहीं कि आप अपन को आत्मा समझना और बाप ने आए समझा गाया भी जाता है कि भाई खेल में 84 का चक्कर है। अभी 84 का चक्कर तो लाखों वर्ष कह देते हैं कौन वो विद्वान पंडित है, उनका तो गपोड़ा ही छोड़ दो, क्योंकि दुर्गति मार्ग में गपोड़े ही होते हैं। अभी तो सदगति मार्ग है ना, और ये समझना भी जरूर है कि बरोबर है सर्व का सदगति दाता एक है तो जरूर सदगति देते। अभी तुम बच्चे पूरा जान गए कि बाबा आकर के हमको 21 जन्म के लिए सदगति को प्राप्त कराए गए। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बात है, ये जो जो भी छोटी छोटी बातें ये सब तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले मनुष्य कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी और कहलाने वाले हो सो तो ये जानते हो, कोई कहे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या जानते हो तो परीक्षा होनी चाहिए ब्रह्मा कुमार और कुमारी की, कि सचमुच ब्राह्मण है या नहीं, ब्राह्मण है या नहीं। तो उनसे कोई पूछे अच्छा अगर तुम ब्राह्मणी ब्रह्मा के बच्चे हो तो क्या सृष्टि के चक्कर को जानते हो, कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। अगर बाप को जानते हो तो रचना की आदि मध्यंत को जानते हो, जानते हो तो बताओ, जानते हो, क्योंकि ये दैन है कि वो कहते हैं कि न हम रचयिता बाप को जानते हैं और न उनकी रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। कौन कहते हैं है? वो ऋषि मुनि कहते आए हम उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते, बेअंत है। अगर तुम बच्चे कहते हैं कि हम परम पिता परमात्मा जो रचयिता है उनको अच्छी तरह से जानते हैं तो उसे सिद्ध होता है कि तुमको उस रचयिता से रचना के आदि मध्यंत को जानना चाहिए। तो ये कहावत है प्राचीन ऋषि मुनि भी रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे इसलिए वो नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? क्योंकि वो जिस नहीं जानते ही नहीं है तो आस्था किस पे ऊपर रखते हैं? आस्था है तो आस्तिक है, और आस्था है ही नहीं तो नास्तिक है, और आस्था है तो किसके ऊपर है? कहीं गणेश के ऊपर है, कहीं हनुमान के ऊपर है, कहीं देवी के ऊपर है, कहीं देवी देवताओं के ऊपर है, कोई भूत प्रेतों के ऊपर, ऐसे आस्था है। माना गति सदगति देने वाला सारी शक्ति का एक है या अनेक है? एक है। तो उसको नहीं जानते हैं तो नास्तिक कह रहे, क्योंकि अगर आस्तिक होते तो रचयिता के आस्तिक होते तो फिर उस रचयिता से सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते, परंतु वो तो जो नहीं जानते हैं वो सब नास्तिक है। तुम बच्चे जानते हो, तुम भी पहले क्या थे? नास्तिक थे। तुम इसके आगे कोई रचयिता और उसकी रचना इस रचना के आदि मध्यंत को जानते थे क्या? नहीं जानते थे, क्योंकि जो भी स्कूल में आते हैं वो तो अनपढ़ ही होते हैं,
कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आकर के पहले दर्जा या पौड़ी कुछ भी पढ़ते तो हैं, फिर उनसे कोई पूछे तो बोलते हाँ हमने स्कूल में ये पढ़ा, आगे हम इन बातों को नहीं जानते थे। अभी तुम तो हो ईश्वरीय स्कूल में और परमपिता परमात्मा ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं, तुम कह सकते हो कि परमपिता परमात्मा जो रचयिता है, तुम्हारी बुद्धि में भी जरूर उनका पक्का समझना चाहिए कि जो रचयिता बाबा शिव है, शिव बाबा ही कहेंगे या तो रुद्र कहेंगे, क्योंकि रुद्र से ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव बाबा को रुद्र क्यों कहेंगे है? इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो रचा किसने? रुद्र ने। शिव ज्ञान यज्ञ है या रुद्र ज्ञान यज्ञ? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहते? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी कैसे देगी? बिंदी ज्ञान देगी नहीं, तो बिंदी रौद्र रूप धारण करने वाले में प्रवेश करती है, तो वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। अभी रुद्र और शिव में कोई फर्क तो है नहीं, और ये भी लिखा हुआ है कि सीधा कि बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर भी ये गीता में ही लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है। सिर्फ वो बिचारे रुद्र शिव और कृष्ण इनमें मुझ गए, मुझ गए। नहीं तो रुद्र कहो शिव कहो बात रहेगी। तो ये यज्ञ भी है, ये भी जानते हो राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ है जो गाया जाता है। किस लिए गाया जाता है? इसलिए गाया जाता है कि हमारी कोई भी राजाई को देने वाला है। राजस्व स्व माने आत्मा, और स्व माना आत्मा, और राज माने राज्य को, आत्मा का राज्य को देने वाला है। देह के राजा नहीं हुए क्या? दुनिया में देह आने वाले राजा हुए या नहीं हुए? हुए, लेकिन उन्होंने सारे विश्व के ऊपर बादशाही नहीं कर पाई, बहुत कोशिश की, हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने, लेकिन सारे विश्व के ऊपर राज्य नहीं कर सके। ये राज्य तो आत्मा से ही, आत्मा के पढ़ाई से ही किया जा सकता है। तो देखो भूल कहाँ है, थोड़ी सी भूल है वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ, और है वो ही गीता जिसमें कहते हैं इसे ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, हुई है या होनी है? है विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है या होनी है? होनी है, हुई नहीं है। अगर आज में हुई नहीं है तो अंत में कैसे होगी? है यदि कि आज में भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, परंतु वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, अभी सारी दुनिया की बात है। देखो ये समझने की बात है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से
कैसे संसार में विनाश वाला प्रज्वलित होती है। ओम शांति।